गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पुण्यात्मा एक नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं माने तो उठकर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्मा हर इसको पांचवा वेद बतावें, और कोई कहता श्रीमद् भगवद गीता है वो पांचवा वेद। अरे पांचवा वेद तो वो उसमें कहा गया है, गीता में तो वेदों का निष्कर्ष स्वयं मान रहे हैं कि वेदों का निष्कर्ष है, और सबका जैसे सब उपनिषद यानी ज्ञानों का ये दूध है गीता, फिर पांचवा वेद क्यों करोगे? तो उन्हीं का समावेश है। पांचवा वेद इसे हटकर है, वो कौन सा है? जैसा आपको कल दिन में सुनाया था वो पांचवा वेद है। आज आपको दास कुछ और ही सुनाना चाहता है। ये शंकराचार्य पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा को तो पूजते नहीं, विष्णु जी और शंकर जी को। और परमात्मा कहा करते तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये शंकराचार्य जी ये भी मानते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एकाध चतुरता दिखाता है, वो कहता नहीं एक ही भगवान है, वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाता है, फिर सतोगुण को लेकर विष्णु बन जाता है, तमोगुण को लेकर वो शिव बन जाता है, वो अलग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञानहीन प्राणी है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। कम से कम अन्य जो शंकराचार्य हो तो ये तो कहते हैं कहां रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये मानते हैं। हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी हमारी पुराणों में लिखा है। तो ये हमारे शंकराचार्य जो ऐसा ज्ञान कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही रजगुण लेकर ब्रह्मा होता है, सतगुण लेकर विष्णु होता है, तमगुण लेकर शिव होता है, उसको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, अथ देवी भागवतम सभाष टीकम समाचम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई मुंबई 4। ये इसका और डिटेल है यहाँ कहाँ से छपी है, ये दे रखिए यहाँ पर। अब हम इसके तीसरे सकंद में आते हैं। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पाते तीसरे सकंद के, ये 11वां पृष्ठ है और तीसरा सकंद है अध्याय 5। अध्याय 5 का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ 8वां। भगवान शंकर कहते हैं हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। शंकर जी कहते हैं मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। अब यहां देखिएगा इसकी संस्कृत में और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहां संस्कृत भी साथ है, हमारे लिए उपकार है परमात्मा का कि अभी शेष है ये संस्कृत, इनकी मूल पाठ भी हमारे पास है। ये क्या कहता है शंकर भगवान कि यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं किस लिए बना दिया तमोगुण है, तमोगुण और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव रजगुण बना दिया उत्पन्न कर दिया। और शिव वीता किमु सतो गुणो हरि विष्णु को क्यों आपने सतो गुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और थोड़ी सी दिखाते हैं श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी हनुमान प्रसाद पोदार ये इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और इसके हम आपको 110 पृष्ठ पर दिखाते हैं बस ज्यादा नहीं हमारा काम चलेगा आज का। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है इसके एंड में लिखा है इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और ये इन तीनों देवताओं में गुण है लेकिन ये शिव कौन है ये इनका पिता है ये काल रूपी ब्रह्म है ये इनका पिता है। जैसे यहाँ देखिएगा ये थोड़ा सा हिंट लेते हैं 100 पृष्ठ पर देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से लिंक बन जाएगा। अब कहते हैं जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं कुछ काल के बाद उसने अपनी द्वितीय की इच्छा प्रकट की उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए इस प्रकार निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक कल्पना यानी मूर्ति यानी कल्पना आकार की कल्पना की जो मूर्ति रहित यानी निराकार परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है सदाशिव ये इनके परम ब्रह्म है। शंकराचार्यों के भगवान सदाशिव है और ये अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जन्य विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाए हैं वो प्रकृति भी कही जाती है जो काल रूपी ब्रह्म के शरीर से निकली है और उसको त्रिदेव जननी भी कहते हैं और वो 8 भुजाओं वाली ये दुर्गा है। अंडरस्टूड कति क्लियर हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है वो शिव की पत्नी बनी उसके शरीर से निकली वे नाना प्रकार के आभूषणों उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है यानी उसी ने तीन रूप बनाकर समुद्र में छुप गई थी और ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह कर दिया था सावित्री पार्वती और लक्ष्मी बनी थी। और वे जो सदाशिव हैं ये काल रूपी ब्रह्म उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव संभोर महेश्वर कहते हैं। वे अब यहां आ गए हम 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता के वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक इसमें शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी दुर्गा और ये काल उस परमानंद स्वरूप वो परमानंद स्वरूप है प्रियतम और प्रिय यानी पति पत्नी रूप में उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। शिव और शिवा दुर्गा और काल और फिर क्या बताया है कि देवर से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार वितरण और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर यानी पति पत्नी व्यवहार किया फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ एक भगवान एक बालक उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब इसे सिद्ध हो गया इस काल रूपी ब्रह्म का पुत्र है विष्णु और दुर्गा इनकी माता, यु काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इसका पिता। अब ब्रह्मा के बारे में देखिएगा, ये छठा अध्याय समाप्त हो गया कि व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां देखिएगा सातवां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से अपने पुत्र नारद को कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर श्याम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु की उत्पत्ति की दुर्गा और शिव ने मिलकर, ऐसे ही मुझे उत्पन्न किया। अब आज का जो प्रसंग दास सुनाना चाहता है आपको कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो है मुक्ति। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और जो चौथा है वो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा इनकी माता है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूं। अब यहां भी देखिए श्रीमद् भगवद गीता इसका कंसेप्ट क्लियर करेगा। जो तीन गुणों की भक्ति यानी तीनों देवों की भक्ति करते हैं उनको क्या उपमा दी है। अब सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता और ये 12 श्लोक है। क्या कहा है? और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी सतीथि और भाव हर जो रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। ये इनका पिता कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का। परंतु वास्तव में मैं उनमें में और वे मुझ में नहीं है, वो उनसे अलग है, गुणातीत है। अब 13 में क्या कहा है कि इस गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजस तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो अब क्या बताता है। अब 7 में देगा 14 श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी के द्वारा किया जा रहा ये व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म की पूजा करता है तो उसको इन ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से अधिक लाभ मिलता है, इसका भाव ये है। अब 15 में क्या कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानकर उन्हीं पर आसक्त हैं, उन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक लाभ से वो जन्म मरण के चक्कर में फिरते रहते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जिसकी बुद्धि नहीं उठती उन्हीं को भगवान मानते रहते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझको नहीं भजते। ये गीता ज्ञान दाता कौन है? ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव है अपने आत्माओं। अब ये कैसे हैं? जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी अरण्यकशिपु ने, और क्या बना? राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया मान बुढ़ाई की भूख में और बक्कल उतरिया। परमात्मा कहते सुख संवेद में अरणक से पूछाती तड़वाई हर ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, वो तो भगत कवावे और कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का शत्रु हो गया मान बढ़ाई ईर्षा के कारण तो राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, बाप अपने पुत्र को मारने उतारू हो जाओ उसे दुष्ट कोई है धरती पे। और ऐसे भगत को कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और फिर तमोगुण शिव की भक्ति की थी, रावण ने कैसा जुल्म किया, परतरिया को उठा लाया यानी अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, क्योंकि दुर्गा के ही अंश हैं ये लक्ष्मी सावित्री और पार्वती, तो ये तीन यहाँ के स्वामी हैं जिनको ये भगवान कहा जाता था। अब तो हम इनको भगवान कहना जरूर पड़े क्योंकि भगवान कहे बिना ये समझ में नहीं आवा हम किसके विषय में बोल रहे हैं। बाकी ये भगवान ये ईश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बारे में शिवपुराण में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जो कल आपको दिखाया था। ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने ये बहुत गलत कर दिया, अपने आप को भगवान मान लिया। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मा बड़े, विष्णु बीच वाले और शिव जी छोटे, ये तीन पुत्र हैं, तीन भाई हैं। और ये शिव का पुजारी कौन? तमोगुण शिव का पुजारी रावण, और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा लिया श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु की पत्नी सीता को। तो इससे दुष्ट कोई होगा, अपनी मां पर नीत खराब कर ली। और राधा यही बकवाद करने का था, वो तो शक्ति थी देवी में, परमात्मा रक्षक था उसका, वो कुछ बिगाड़ नहीं सका उस देवी का। लेकिन उसने घाट निकाली, कसर नहीं छोड़ी बकवाद करण में, और आखिर में मांस खावे शराब पीवे कुत्ते वाली मौत मारेगा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का एक इस्तमोगुण भगवान शिव का पुजारी था, भस्मागिरी भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर इसके द्वार के सामने नीचे न सिर करके ऊपर न पैर सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। एक दिन पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप तो देवों के देव सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आपका पुजारी क्या मांगता है इसको दे दो। शिव जी ने कहा, बोल भाई क्या मांगता है। उसने कहा, जी मुझे वरदान दे दो, वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने कहा, चलो भाई मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है। तो वचनबद्ध होते सीधा खड़ा हो गया, तो छोड़ दी भक्ति भक्ति और कहने लगा, मुझे आप भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव के हाथ में भस्म कड़ा था, वो निकाल कर दे दिया। उसमें क्या विशेषता थी कि उसको किसी के सिर पे ऐसे करके न्यू कह दे भस्म, वो जल जाता था सामने वाला। अब जो ही उस भस्मागिरी यानी तमोगुण शिव के पुजारी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसी समय आंख बदल गया। न बोला, ओले शंकर होशियार, अब तो न मारूंगा, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, राक्षस का स्वभाव एकदम। अब भगवान शिव आगे आगे और पुजारी पीछे पीछे स्पीड खेच रहे दोनों। अब पुजारी ने तेन सोची थी, वो मर जा, बटंटा कटेगा, सदा का काम साफ हुआ तेरा। और भगवान शिव ने सोचा, यू भस्म कड़ा तो जबरदस्ती झेक में तेरे सिर का निकटा रही, तू मरिया, इनको हम अजरवमर मृतंज कालज सुना करते थे, अविनाशी अविनाशी नोडर के बाद जागर। अविनाशी तो कबीर परमात्मा थे, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान और आराम से बैठे, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और बताने कितनी यातनाएं दी थी मालिक को, अविनाशी का तो किधर जिक्र भी नहीं। अपने आत्माओं, अब इनकी रक्षा भी भगवान करता है जब ये इसी आपत्ति में आते हैं, क्योंकि ये भी उसी कबीर परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं, परम अक्षर पुरुष के बच्चे हैं। आपत्ति आई, परमात्मा पार्वती रूप बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया कुछ दूरी पर और कहा कि भस्मागिरी कहां जा रहे हो, आ जाओ बैठो, दो बात करेंगे। अब भस्मागिरी ने सोचा, डट जा, पार्वती के लिए तो खड़ा कर ही रहा था, वो वहां खड़ा हो गया। और पार्वती कहने लगी, कुछ डांस वांस करके दिखा मैं, ताकि कुछ तेरे अंदर गतिविधि देखूं। तो वो कहने लगा, जी मैं तो तपस्वी आदमी हूं, डांस डांस के देख रहा को नहीं। पार्वती कहने लगी, ला मैं सिखाऊं तेने। पार्वती रूप में परमात्मा कहते हैं, कैसे करो, इस हाथ ने ऐसे करो, पैर ने ऐसे करो, जिस हाथ में कड़ा था उसको बोली और कर ऊपर, सिर पा लिया, जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी मर गया, भस्म हो गया, नष्ट हो गया, जल गया। वो उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके, वो परम अक्षर ब्रह्म विष्णु रूप धारण करके शिव जी के आगे जाके खड़ा हो गया और कहा, कहां चले भोलेनाथ। भगवान शंकर कहने लगे, भाज ले विष्णु, बात बिगड़ गई, अब क्या हो गया, अब भस्मा गिरी ने मेरा भस्म कड़ा ले लिया और मेरा पीछा पड़ रहा है। भगवान बोले, ये देखो ये कड़ा तेरा मेरे पास है, तो आप कैसे ले आए कि मैंने वो मार दिया, कैसे मार दिया, फिर सारी डिटेल बताई। जब उनका दिल डटिया तो वापस आकर राख देख ली ना भस्मागिरी की। जब शिव जी का कलेजा धड़कना बंद होया, कलेजा धड़कना जब बंद हुआ, दिल उन आत्माओं हम इनको अजर अमर कहा करते थे। दास ये सच्चाई बता रहा है, किसी की आलोचना नहीं करा, इन्हीं के इतिहास और इनके पुराणों में लिखा हुआ है। अब वो बसमा गिरी बसमा असुर कहलाया, राक्षस और कुत्ते वाली मौत मरिया। ऐसे दूषित कर्म जिसकी पूजा करे उसी की पत्नी पर बदनीत, ऐसे नीच व्यक्ति ये त्रिगुण तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी के। अब जैसे गिरी पुरी सन्यासी ये सरस्वती ये सारे इसके ये पुजारी हैं शिव जी के, ये नाथ कनपाड़े बिना कनपाड़े ये नागा जो कति नंगे फिरते हैं, ये सब शिव के पुजारी हैं तमोगुण के। और वैष्णो है ये विष्णु जी के पुजारी वैष्णो। एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पर एक कुंभ के पर्व का एक विशेष आयोजन हुआ, और जब ये कुंभ का मेला होता है ये सभी त्रिगुण उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, अब ब्रह्मा जी की तो उपासनाएं करते नहीं, शिव और विष्णु जी के उपासक वहां पहुंच जाते हैं, अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, पुरी एक ग्रुप में और गिरी एक ग्रुप में, नागा एक उनका अलग होता है समुदाय, और विष्णु के उपासक वैष्णो एक उसमें अपने खेमे में चले जाते हैं। जब वो स्नान का समय होता उससे पहले ये सभी अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे ग्रुप के ग्रुप चल पड़ते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए तमोगुण शिव के पुजारी, और अर्की पैड़ी पर वो नान का समय था उनका अपना बनाया निर्धारित, वहां जाकर के वो खड़े हो गए, नाने की पोजीशन पकड़ी स्नान करने की। इतने में वैष्णवों का ग्रुप आ गया पीछे, इस सतोगुण विष्णु के उपासक, उन्होंने कहा ये नागाओ तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, नी इच्छा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नहाएंगे पहले स्नान करेंगे कुंभ के प्रव में गंगा में। वैष्णो कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख मसले फिरते हो, शरण फिरडो, चुप खबरदार, जब पहले नहाए तो हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक। अब वो तमोगुण के उपासक और ये सतगुण के उपासक बैठ गए दोनों, वो नाना भी भूल गए, अर्की पैड़ी भी भूल गए, भगवान का प्रेम भी भूल गए, उद्देश्य भी भूल गए, लठम लठा केवल एक स्नान के ऊपर प्रथम और बाद में। जब एक घंटा पीछे नाले कौन सा गंगा का पानी मलिन हुआ था, अकल देखो इनकी। कहते हैं 25,000 व्यक्ति ये त्रिगुण उपासक, त्रिगुण उपासक ये आपस में कटका मर गए, और वहां पर गंगा का पानी लाल कर दिया, 100 गंगा में बहते हुए जा रहे हैं, पड़े हैं जगह जगह, बुरा हाल हो गया, खून बहा दिया। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है भगवान ने, तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। क्या कहा कि तीर तलवार निकाल के अड्डट कर युद्ध मचावे हैं ये, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, भगवान की पैड़ी कहे भगवान का प्रेम भी उनके मन में नहीं आया, और तेरा गजब हुई हो, और काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में संत को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे यानी इनसे कोई शिक्षा दीक्षा लेने जावे तो उनको भी नरक पठावे हैं, ये गुटी नये प्यावेंगे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कही थी ये बातें हैं, हमारे हित में कहा था कि तुम ये पूजा ना करो, तुम पूजो मुझे यानी परम अक्षर ब्रह्म है वो स्वयं, उसकी पूजा करने से आपका जन्म और मृत्यु का रोग, जरा मरण का रोग समाप्त होगा। इस जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध में, आपके भाग में कोई ऐसी दुर्घटना, कोई अकाल मृत्यु या कोई भी आपदा होगी वो भी टलेगी। लेकिन उस समय इन त्रिगुण उपासकों ने, इन हमारे नकली हिंदू धर्म के नकली गुरुओं ने ये कहकर के कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को, इसकी बातें मत मानना, उसका खामियाना आज तक भुगत रहे हैं उस अशिक्षा का। आज परमात्मा ने पहले हमें शिक्षित किया आप जी को, फिर दास की सेवा दे दी, और आज वही ज्ञान है, वही समाज है, शहर स्वीकार कर रहा है। एक बार इन आग लग गई थी, क्रोथा कांड करवा दिया था इन्होंने, और इसी कारण से इन आचार्यों ने, नकलियों ने के, ताकि इनकी पोल ना खुल है, बेइज्जती ना हो जाए, जनता से भाड़ में जाओ, इनकी दुकान चलती रहे, इनका ये उद्देश्य था। इतना बदनाम कर दिया इस दास को कि घर वाले भी मुंह मोड़ सकते थे, जब सच्चे परिचित ना होते, शिष्यों का तो कहना क्या। लेकिन एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे घुट्टी पैर रखी थी ज्ञान की, उनको सच्चाई की, तो वो कैसे दूर जा सकते हैं। शीश देन को तैयार हो गए कि हमारे साथ कुछ भी बने, सच्चाई यही है, और आज उसका परिणाम आप देख रहे हो। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल रहा है पुण्य आत्माओं, वो सच्चाई जो 600 वर्ष पहले भगवान ने बोली थी, आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर सतलोक से और ये सच्चाई लिखी थी, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। असली नाम बिना, सही भक्ति बिना कैसे पार उतरोगे, देखिएगा। ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है, ये ग्रंथ पूरा देखिएगा, ये पूरा कबीर सागर है। और इसका हम देखते हैं ये कहां से छपा है, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, इसके कौन है, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत यानी संशोधित है, ये मुद्रक है एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसके हम आपको ले चलते हैं, ये है ज्ञान बोध और बोध सागर। ज्ञान बोध तो चैप्टर है, बोध सागर खंड है 21 पृष्ठ पे, ये 21 पृष्ठ ब्रैकेट में इनके, ये तो हमने अपनी सुविधा अनुसार लगा रखे हैं जानने के लिए। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोरा ना कोहे न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है धर्मदास जी। अब क्या बताया है, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा, राम है ये नाम नहीं है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। कहता कुछ संक्षेप पर मैं बता दूंगा, उस समय तेरी बात बन जाएगी। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। यो आदि राम है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम शब्द है, यहाँ पर नाम नहीं है। ज्ञानी सुने, जो बताने जा रहा हूं धर्मदास, जो ज्ञानी सुनेगा वो तो कहेगा बस सच्ची है कति, सारे प्रमाण है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब क्या बताने चले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने पहले, यानी कबीर साहब ने खुद पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की और पीछे से दुर्गा की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुर तय आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। यहाँ है टेर सुनी तहा हम आए, ये कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत इसमें फेर बदल कर दिया, क्योंकि ये कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते कबीर पंथी, ये नकली। अब 22 पृष्ठ पे धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। परमात्मा बता रहे हैं कि इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। यूं कहता था मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्मराय कहा। इसने अपने नाखनों से स्त्री इंद्री बनाई दुर्गा के। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सु आशा तबासा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। पुत्रों को देकर तीन लोक, ये पृथ्वी लोक पाताल लोक और स्वर्ग लोक। कहता आप सुन में सबसे ऊपरले स्थान पर जाकर गुप्त रहता, जिसको काशी कहते हैं, काशी बोलेंगे। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भक्ति करे निरंजन की, उनको पता नहीं चला। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। इनको भी मारेगा और खाएगा, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्ह्या, काल पाया सभी गैलीना। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपने आत्मा इन शंकराचार्यों से पूछ लेना, गीता के श्लोक सारे सुना देंगे और पुराणों के श्लोक सुना देंगे। संस्कृत घोट रखी इन्होंने, का कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। यदि इन्होंने अब इसी शंकर पंचम में 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है जिसने सदग्रंथों का ध्यान किया और धर्म आचरण किया नहीं, यानी उनके अनुसार साधना करी नहीं, वो सबसे बड़ा पशु है। कही बाप हिसाब ला लिए, सबसे बड़े पशु कौन है, इवदास आपको बताएगा। इन शंकराचार्यों से प्रश्न करते हैं, पूछा करते थे हम भी इन गुरुओं से कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी ये भी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ये किसकी भक्ति करते हैं। कोई तो कहा करता कि विष्णु तो श्री शिव जी की भक्ति करता है और शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। एक यहां तक सिर फेरा मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। चोखा भाई बताओ। और एक शंकराचार्य कहता ये अपने ही स्वरूप की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो ये आत्मा ही परमात्मा है, अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी। अब देखियो, अब आपको दिखाते हैं ये शंकराचार्य क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, भगवान विष्णु क्या बताते हैं, मैं किसकी भक्ति करता हूं। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके संपादक सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, अनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। अब इसके हम 28 पृष्ठ पे आते हैं, यह है पहला स्कंद पृष्ठ 28। व्यास जी ने पूछा, उसका उत्तर दे रहे नारद जी, महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, जो प्रश्न कर रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं, वक्ष तल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। नारद जी कह रहे हैं जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देख लेना नारद कर व्यास जी कर ब्रह्मा कर विष्णु का कैसा ज्ञान है आध्यात्मिक। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की, किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि नो बोले, पृष्ठ 29 पा गई बा। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, ब्रह्मा हो गया रजगुण, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है तो विष्णु है सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, ये शिव हो गया तमोगुण। तो उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से सहार कार्य भी होना संभव नहीं। आगे क्या बताते हैं, ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए, परंतु सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। ये निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं परलय काल में इस शेष नाग की सया पर सोता, सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन काल से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है, और फिर यहाँ निचोड़ कर दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, अब ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहते हैं, विष्णु जी तो ध्यान करे है श्री राम का, राम ध्यान करे है शंकर का, या शंकर जी ध्यान करे विष्णु का। किसी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते, एक शंकराचार्य कहता है कि श्री राम का ध्यान करते, और एक कहता है ये अपने स्वरूप का ध्यान करते, और ये देवता क्या कहते हैं, हमारे पवित्र पुराण क्या कहते हैं जिनको शंकराचार्य जी सच्चा मानते हैं कि ये पुराण सत्य है, ये क्या बताते हैं कि भगवान विष्णु कह रहा है मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, और इससे बढ़कर और कोई भगवान मुझे पता नहीं। अब ये देवी क्या बताती है पढ़िएगा 562 पृष्ठ पे, हमारे सदग्रंथ थे। अब क्या बताते हैं, एक बार धर्मदास जी ने पूछा था, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सतलोक यानी अपने निज धाम में ले गए थे शाश्वत स्थान में, फिर उनको वापस छोड़ दिया था, फिर उन्होंने देख लिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहां तक स्थिति है इनकी और ये परमात्मा स्वयं है, तब उन्होंने कहा था भगवान ये वेद और ये पुराण इसका मतलब ये सब झूठी है, क्योंकि आप परमात्मा, और ये बताओ वेदों में लिखा है शंकर विष्णु भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं, और पुराणों में बताओ यही परमात्मा सर्वशक्तिमान अजर अमर लिखा है, तो इसका मतलब ये सब झूठे वेद और कतेब सब झूठे हुए। परमात्मा ने कहा कबीर साहिब जी ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, ये पुराण वेद और गीता ये झूठी नहीं है, झूठे ये है जो इनको समझ नहीं सके। अब देखो श्री देवी जी क्या बताती है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, यानी पहले तो देवी ने अपनी बताया कि मेरी भक्ति करे तो भाई ऐसी कर दे, लेकिन ये ठीक नहीं। आगे क्या स्पष्ट किया है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबका मन और वही सब परम सत्य और अमृत अवनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भावनागुप्त चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, प्रणव माने ओम त धनुष है, जीवात्मा साधना करे ओम लेकर उद्देश्य ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म की पूजा करे। यानी नीचे स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा तू प्रभु भगवान का पता नहीं, मैंने मुझे नहीं मालूम। अब ये दुर्गा जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। हम आगे देखेंगे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति होगी। सोम तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ये देखिएगा 563 पृष्ठ पे आगे। हम वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, यानी ब्रह्मलोक में स्थित है, वहां रहता है। अपुणात्मा, अब देखो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे शंकराचार्यों को तो ज्ञान है नहीं, जो कोई गटबट मारे वो उसकी कहता, उसकी भक्ति करता, उसकी करता है। ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं देवी की भक्ति करता हूँ, और इससे ऊपर मैं किसी देवता के बारे में मैं नहीं जानता कि कोई और भगवान भी है। दुर्गा जी कह रही है कि तुम सब बातों को छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोक पुनरावर्ती के अंदर है, वहां गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उससे शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, सदा पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हो सकते। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में गीता जी में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस संसार में कभी नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण में हूं, और पूजा मत करो। अपनी को भी रिजेक्ट करता है केवल उसी की भक्ति करो। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो पूजा कैसे करनी है, वो ये दास बताओगा, ये भेज रखे उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा बताने के लिए। अपनात्मा और सत्संग तो बहुत करने को दिल करता है, परंतु गर्मी का मौसम है, सर्दियों में तो कई कई घंटे लगे रहता था दास साहब को, या गुटी पिलाने के लिए। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और ये दास, जैसे आप तो ऐसे बच्चे हो जैसे जब बच्चे को भूख लगती है वो खेल रहा होता है गली में, माता को पता होता है कि मेरे बच्चे को भूख लगाई होगी, उसको ल्यावेगी उठाकर गली में थे और फिर दूध पियावेगी। वो दूध पीता पीता भी नो सोचे एक बार छोड़ दे मां फिर खेलने जाऊं, यानी दूध पीता पीता भी नो रहा दूध पी के फिर भाग दे, और मां उसने सीने का लगा भी बेटा ले पी थोड़ा सा और पी जा। और वो ने सोचा ये छोड़ते ही भाग लो खेलन का, फिर वो प्या के छका के उन्हें छोड़ देख ले तो खेल भी आई भी। तो पुणात्माओं ये आत्मा की खुराक है जो आपको ये दास उस सत्यनारायण कथा को सुना रहा। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा, ये श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते हमने और शंकर जी को अजरो अमर, ये तो अज्ञान भरा करते हमारे अंदर। तो ये दास आपको इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा की आत्मा आप उसके बच्चे हो और दास आपके लिए बना दिया यू एक दाई आया समझ लो, और आप यहां बुलाए जाते हो, आपको अमृत दूध पिलाया जाता है और पीते या फिर भाग जाते हो क्योंकि छका दिए 10-15 दिन खूब आप तरफ तरह हो गए, फिर आपको बुलाया जाता है, कहकर बुलाया जाता है कि ऐसे नहीं आओगे तो अच्छा नहीं रहेगा है, और फिर आप आते हो दूध से आपको छिका देते हैं। यहां बैठे बैठे भी आपने सोचो कल वो करना वो करना, कोई बात ना वो भी कराइयो फिर दूध भी पी जाइयो। बोलो सतगुरुदेव, तो इसी तरह वो बच्चा फिर युवा हो जाता है, ऐसे आपकी बुद्धि युवा हो जाएगी पुण्यात्माओं और परमात्मा पाओगे सतलोक जाओगे। सत साहे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि आप सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं हम बहुत भयंकर लोक में अपना टाइम पास कर रहे हैं और जिस लोक में हम रह रहे हैं यहां का जो रब है भगवान है गॉड है यहां का जो स्वामी है ये एक खलनायक समझ लो। इसका प्रत्येक काम धोखे से विवश करके ये हमसे करवा रहा है। हम यहां के रहने वाले नहीं हैं, ये सबसे घटिया स्थान है जिस लोक में हम रह रहे हैं, लेकिन इस लोक में एक ही हमारे लिए गोल्डन चांस होता है कि जिस समय हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस समय ये तत्व ज्ञान हमें मिल जावे जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले हमें प्राप्त कराया था, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे पवित्र हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे वो नकली थे, वो डुप्लीकेट थे, वो शास्त्रों से अनभिज्ञ थे, तत्व ज्ञान से वो अपरिचित थे। परमात्मा हमें वही ज्ञान सुनाया करते थे जो आज आपके समक्ष ये दास सुना रहा है, लेकिन इन स्वार्थी व्यक्तियों ने तत्व ज्ञानहीनों ने परमात्मा के उस सत्संदेश को हम तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने हमारे साथ एक शत्रु का रोल किया और काल के दूत का काम किया। परमात्मा बड़े दयालु हैं, जैसे आपको पहले भी सत्संग में सुनाया, परमात्मा से इस काल भगवान ने पहले तो वर मांग लिया, वचनबद्ध कर लिया कि आप मुझे कुछ सुविधाएं और दे दो, मेरे लोक में कम है। तब परमात्मा वचनबद्ध हो चुके तो काल भगवान ने क्या मांगा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गमन संसार ही कीजे। पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है कलयुग में मैं अपनी आत्माओं को निकालूंगा और जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा और तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका इस प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जन्म या बिजली पीढ़ी कलियों की, और परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, नहीं तो चौथा युग आ गया था। ऐसे ही दादे परदादे अपने परंपरागत कर्म को ही करते हुए आ रहे थे। जैसे किसान है, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देता था, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देकर चला जाता था, उसी क्रियाओं में हम लगे रहा करते थे। एक विशेष शांति थी और हम जैसे आजकल माया की हवस में अंधे होकर दिन रात बेचैन रहते हैं, ये उस समय नहीं था। तो ऐसे अब परमात्मा ने क्या किया, हमें शिक्षा दी, इस शिक्षा का हमने दुरुपयोग किया, परमाणु बम बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, गाड़ी मोटर कार बना ली, सारा दिन धूं धूं फू फू निरा प्रदूषण कर दिया पूरे वातावरण में। दो रोटी और एक कमरा चाहिए एक परिवार को, दो तरह का परिवार हो तो दो हो जाए, गणे हो जाए तो तीन कमरे जायद से बना ले, और अपना सिंपल वे से रहना चाहिए था। हमने एक अपने जो क्रियाकर्मों को अपनी इन परंपराओं को इतना विशाल कर लिया, अब ये हमारे जी की झाड़ बन गई। बढ़िया कोठी हो तो रिश्तेदार राजी रहेंगे, घना धन हो तो इज्जत बनेगी, या इज्जत नकली है, एक मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा तड़फ है, मृत्यु हो जा, फिर कुत्ता बनकर वहीं सैर सपट्टा करे, पहले तो अपलातून बना फिर था। तो ये बातें सत्संग से ज्ञान होता है। तो इस शिक्षा का जो हमें एक विशेष लाभ है, इसका हानि गणी है और लाभ एक है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। इसने हमें बेईमान बना दिया, इसने हमें इतना चतुर बना दिया, भाई भाई का प्यार रहा नहीं, बहन भाई के साथ मुकदमे, माता पिता की तरफ विशेष लगाव रहा नहीं, क्योंकि हमें एक ही पढ़ाई पढ़ ली हमने, माया गणी हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, ये सब अज्ञानता का ही पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, अंतःकरण पर डला हुआ। तो इसका इस सत्संग से निवारण होगा। तो पुण्यात्माओं, पहले हमारे पूर्वज शिक्षित थे और जिनको हम अपने धर्मगुरु मानते थे, ये केवल अक्षर ज्ञान अवश्य रखते थे लेकिन सदग्रंथों से अपरिचित थे। तो पुण्यात्मा परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो पांचवा वेद ये सुनाते हैं। अब जब परमात्मा ने उस पांचवें वेद में आकर बताया है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं, वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं, चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हो लेकिन हमारा मूल पिता एक ही है।